sa venire. अपने जीवन को अच्छा बनाने की बहुत सारी बातों पर विचार किया है। आचार्य भगवंतों ने एक श्रावक के आध्यात्मिक विकास के लिए जो 11 श्रेणियाँ या जो 11 कक्षाएँ या 11 प्रतिमाएँ बताई हैं, उन पर भी हमने विचार किया है। श्रावक अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध बनाने के लिए क्या क्या करें, वो अपने घर गृहस्थी के बीच रह करके किस प्रकार अपने धर्म का साधन करें। बात महत्वपूर्ण सिर्फ इतनी है कि वो सारे गृहस्थ के कार्यों के बीच भी और कैसे अपना धर्म का साधन कर सके, अपना धर्म ध्यान बनाए रख सके, उसके लिए और सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा और पापों से धीरे धीरे अनाशक्ति, ये प्रारंभ है। जितनी जितनी हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है और पापों से हम जितने जितने अनाशक्त होते हैं, उतनी हमारी श्रेणियां बढ़ती चली जाती है। फिर 5 पापों से विरक्त होकर के उन 5 पापों के संभालने के लिए और भी 7 व्रत ग्रहण करते हैं और 12 व्रतों का पालन श्रावक घर गृहस्थी में रह के करने लगता है। धीरे धीरे आत्मचिंतन के लिए समय निकालता है, उसी का नाम सामायिक है। और अधिक आत्मचिंतन की प्रक्रिया चल सके, आध्यात्मिक रूप से हम अपना विकास कर सकें, तो फिर पर्व के दिनों में उपवास की साधना कर लेता है। इंद्रिय संयम भी थोड़ा थोड़ा आता जाए तो सचित्त वस्तुओं का त्याग करके सब चीज़ों को प्रासुक करके ग्रहण करने लगता है। अभी तक संसार में गृहस्थ में बहुत व्यवहारिकता का निर्वाह कर लिया, अब व्यवहारिकता का निर्वाह बच्चे करें, अब हम अपना कल्याण अधिक से अधिक करेंगे। सो रात्रि में अब स्वयं भी भोजन तो पहले से ही नहीं करता था, अन्य जो परिवारजन हैं या मेहमान हैं उनके भी रात्रि में भोजन के लिए वो समर्थन नहीं करता। इस तरह से एक सीढ़ी और चढ़ जाता है। अभी जिसने विवाह किया था, जिस जीवन साथी के साथ अपना जीवन जी रहा है, उसके साथ भी अब अत्यंत पवित्र संबंध हो गया और दोनों एक दूसरे के जीवन को संयमित बनाने में लग गए। ऐसा जो एक दूसरे के जीवन के संयमित बनाने में लग जाना है, वही तो एक सीढ़ी और आगे चढ़ जाना। फिर अब खूब कमा लिया, जिंदगी निकल गई कमाते कमाते, अब क्या करना है। तो जो आरंभ है संसार बढ़ाने वाला, षट आवश्यक कार्य जो षट कर्म जो करते थे, उनसे भी उपरत हो गए। बच्चे जाने, गृहस्थी वो संभालें, कमाई वो करें, हमने अब उससे भी विश्राम ले लिया। अभी घर नहीं छोड़, घर में है प्रेम पूर्वक, और इस तरह से घर से घर में रहते हुए भी डिटैच होते चले जाना, अनाशक्त होते चले जाना, क्योंकि परिपक्वता आती चली जाती है अगर, तो फिर उसके बाद आसानी हो जाती। नारियल लगता है तब उसमें, जब तक वो ऊपर वाले कवच को छोड़ नहीं देता तब तक अगर फोड़ो तो मुश्किल होती है वो। और अपन देख लेते हैं कि नारियल में अच्छा है कौन सा, तो जो बजने लगा मतलब जिसने ऊपर के कवच से वो डिटैच हो गया, ऐसा व्यक्ति अगर छोड़ेगा तो आसानी से अपने जीवन का और अपने आसपास के जीवन का भी कल्याण करेगा। और जिसकी आसक्ति बनी रहेगी घर गृहस्थी के प्रति, फिर घर छोड़ भी देगा तब भी वो अपना घर का इंतजाम करेगा छोड़ने के बाद भी। ये इसलिए घर गृहस्थी से बिल्कुल विश्राम ले लिया, घर में अभी है, घर नहीं छोड़ा, लेकिन घर गृहस्थी के काम से विश्राम ले लिया। फिर जो परिग्रह संचित करके रखा था एक दिन, वो भी अपने बच्चों को सौंप दिया कि भाई अब हमारे लिए आवश्यक नहीं है। इस तरह एक सीढ़ी और आगे चढ़ गए। परिग्रह और आरंभ के लिए अभी तक अनुमति देते थे, अब वो देना भी बंद कर दिया। अपने लिए अभी तक भोजन बना लेते थे, बना सकते थे, लेकिन अब अपने लिए भोजन की भी चिंता नहीं करेंगे। अब तो कोई कोई बुला लेगा तो चले जाएंगे, अनुमति त्याग। इस तरह से घर में रह करके ये 10 सीढ़ियां चढ़ ली। अब ग्रह तो मुनिवन मित्वा गुरु उपकंठे व्रतानि परिग्रह्य वैक्षासनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्चेद खंडधरा। अब एक काम और रह गया कि सबसे क्षमा याचना करके और सबके प्रति क्षमा भाव धारण करके, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सबके प्रति मन में क्षमा भाव है, आज तक जिनसे राग द्वेष करते रहे उनके प्रति भी साम्य भाव है। ऐसी स्थिति निर्मित हो जाने पर फिर ग्रह तो मुनिवन मित्वा गुरूप कंठे व्रतानि परिक्रहे, घर से निकलकर यानी घर का त्याग करके गुरुओं के आश्रम में पहुंच करके वहां उनसे 11वीं प्रतिमा के व्रत ग्रहण कर लेते हैं। उत्कृष्टस चेल खंड धरा, उत्कृष्ट श्रावक होकर के मात्र खंड वस्त्र को धारण करके वैक्षासनस तपस्यन भिक्षाचर्या से आहार करके और अपने आत्म विकास में लग जाता है एक श्रावक। ये स्थिति निर्मित हो जाती है श्रावक के जीवन में अगर वो क्रम क्रम से प्रयत्न करे तो। ज्यादा कठिन नहीं है, अपन ने करानी है, कोई भी काम अपन शुरू करते हैं तो कठिन लगता है, फिर अगर करने लगे तो ज्यादा कठिन नहीं लगता। एक सीढ़ी चढ़ जाओ भैया, फिर उसके बाद तो आराम से चढ़ते चले जाते। वो तो जब तक नीचे खड़े हैं सीढ़ियों के, अब ऊपर तक हम कैसे पहुंचे, हमारे बस को नहीं है, बीच में पहुंचे हो गिर पड़े, ऐसी बहुत सी बातें आएंगी। लेकिन एक सीढ़ी चढ़ गए, अब तो थोड़ा और है, एक सीढ़ी और चढ़ गए ऊपर, जैसे जैसे जो है बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे आसानी मालूम पड़ने लगती आखिरी समय में। और ग्रह का परित्याग करके और व्रत धारण करना मुनिजनों के निकट, ये जरा सी समझने की प्रक्रिया है। संसार में जब तक कोई असंतोषी रहेगा तब तक संसार से पार नहीं होगा, और इसीलिए आचार्य भगवंत घर गृहस्थी में ही संतोष की साधना करवाए दे रहे हैं। संतोषी व्यक्ति घर छोड़ेगा तो समता भाव धारण कर पाएगा, और असंतोषी व्यक्ति घर छोड़ेगा तो उन्हें समता भाव आएगा और उन्हें संतोष आएगा। और असंतोष तीन तरह का है, पारिवारिक असंतोष, सामाजिक असंतोष और आध्यात्मिक असंतोष। सुदो वाला तो कठिन है। पारिवारिक असंतोष का कारण क्या होता, आर्थिक तंगी है, भौतिक सुख सुविधा के साधनों की कमी है, तब भी परिवार में असंतोष है। परिवार में एक दूसरे से प्रेम भाव नहीं है तब भी पारिवारिक असंतोष है। ऐसा व्यक्ति भी घर छोड़ सकता है भैया, ऐसे व्यक्ति के ग्रह परित्याग का नाम ग्रह परित्याग नहीं कहता, वो तो घर छोड़ना कहलाता कि निभी ने सो छोड़ नहीं। जिसने पारिवारिक असंतोष के बिना, जो अपने परिवार से अत्यंत संतुष्ट है इसके बाद भी संसार की वास्तविकता को जान करके छोड़ा है, तो ऐसा व्यक्ति जो पारिवारिक रूप से असंतुष्ट है वो अपने भौतिक सुख सुविधा के साधनों के पूर्ति में ही जीवन व्यतीत कर देता है, चाहे घरे रहे हो चाहे घर से बाहर निकल जावे, उते भी वो वही कर है जो कछु उसको असंतोष है। तो आ रही हमारी बात समझ में कि नहीं, देखने में भी आती है। पारिवारिक असंतोष वाला व्यक्ति या तो घर में रहेगा तब भी भौतिक सुख सुविधाओं के साधन जुटाने में पूरा जीवन व्यतीत कर लेगा, कभी भी धर्म ध्यान करने की उसको फुर्सत नहीं है। पारिवारिक असंतोष वाला व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर सकता, धर्म ध्यान का दिखावा कर सकता, मंदिर जा करके पूजा पाठ अच्छी कर सकता, लेकिन असंतोष मन के भीतर है तो भगवान के सामने भी अपने भौतिक सुख सुविधा को ही मांगेगा, और कदाचित ग्रह का परित्याग भी कर देवे तो भी अपनी भौतिक लालसाओं के चलते हुए और समाज के बीच रह करके भी उनसे भी अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के जुटाने का ही प्रयत्न करेगा। इसलिए पारिवारिक असंतोष खतरनाक चीज है। और फिर सामाजिक असंतोष, समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलना सामाजिक असंतोष का कारण, समाज में सामाजिक कार्यों में व्यय होने वाली संपत्ति को देख देख करके असंतोष, उसका ही विचार कर रहे हैं इसमें असंतोष, अपनों ढीला नहीं लगो लेकिन दुनिया भर को का भाव कैसे भाव, ये असंतोष समाज में फैली हुई कुरूतियों को लेकर के असंतोष, इस प्रकार के असंतोष वाला व्यक्ति भी समाज सुधारक हो सकता है, धार्मिक नहीं हो सकता, धर्मात्मा नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से लोग हैं, वे घर का त्याग करके भी समाज सुधार में लग जाए। देखते हैं अपन समाज की कुरीतियों के बारे में, फिर जो है दुनिया भर की बातें शुरू हो जाएंगी। तो भैया आप समाज सुधारक बन जाओ, धर्मात्मा नहीं बन पाओगे। धर्मात्मा और समाज सुधारक में बहुत अंतर है, देखते हैं अपन। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से अत्यंत संतुष्ट है, अच्छा स्टेटस, तीर्थंकर परिवार में अत्यंत समृद्ध परिवार में उत्पन्न होते हैं, कोई असंतोष नहीं है, अच्छी ख्याति मिलती है समाज में भी, उनका अच्छा रुतबा होता है, देख लो आप, सामाजिक रूप से भी अत्यंत संतुष्ट हैं, और फिर उसके बाद सिर्फ एक असंतोष बचा, आध्यात्मिक असंतोष, आत्म विकास का असंतोष। वो तो बहुत अच्छी चीज है, मैं अपने आत्म विकास में कमजोर क्यों हूं, मैं अपने धर्म ध्यान में कमी क्यों रखता हूं, मेरे धर्म ध्यान में और बढ़ोतरी होनी चाहिए, ऐसा जो भाव है वो भाव तो हमारे लिए आगे बढ़ाने का। ऐसे भाव से जो ग्रह का त्याग करता है वो ग्रह त्यागी वास्तव में ग्रह त्यागी कहलाता, उसको ग्रह त्यागी भी न कह के ग्रह खोजी कहना चाहिए। क्या नहीं आया समझ में? ये तो अपन जो बनाते हैं भैया वो ग्रह नहीं है, वो तो मकान है, ईंट चूने से बना हुआ है। सो उसका त्याग करना वो हमारा था कहां जो हम त्याग करेंगे? वास्तव में ग्रह की खोज करना, इस झूठे घर को छोड़ करके वास्तविक ग्रह की खोज में निकलना, ये ही है ग्रह त्यागी पना। हम तो कबहू न निज घर आए, हम इसी को अपना घर मानते रहे, ये हमारा भ्रम था। सो आज ग्रस्त जीवन में रहते रहते और एक स्थिति ऐसी बनी कि वो भ्रम भी टूट गया, तो ग्रह तो मुनिवन मित्ता गुरुप कंठे व्रतानी परी, तब फिर जो है ये घर मेरा है ही नहीं, मैंने अपना मान रखा था, अब मैं अपने वास्तविक घर को खोजने निकलूं, ऐसा विचार करता है। और ऐसे विचार से इस झूठे घर गृहस्थी के जंजाल को छोड़ देता है। वास्तव में वो है शावक की सबसे ऊंची स्थिति। पहले से छठवीं प्रतिमा तक जघन्य शावक कहलाता है, सातवीं आठवीं नौवीं प्रतिमा वाला मध्यम शावक कहलाता है, और दसवीं ग्यारहवीं प्रतिमा वाला उत्कृष्ट शावक कहलाता है। अभी साध नहीं कहलाता, एलक और छुल्लक दो अवस्थाएं होती हैं उत्कृष्ट शावक की, जिसमें एक दुपट्टा और कौपीन रखता है और अपने बालों को चाहे तो कैंची इत्यादि से भी बनवा सकता है, थाली में या कटोरे में भोजन कर सकता है, और मुनियों के पीछे पीछे चला जाता है भोजन के लिए। जहां मुनि महाराज भोजन करते हैं वहीं पर किसी ने कहा कि मन शुद्धि वजन शुद्धि काय शुद्धि हार जन शुद्ध आप भी पाओ भोजन, तो बैठ जाता है। अब बात अलग है कि अब तो बहुत सम्मान चाहिए, एलक छुल्लक को भी खूब सम्मान मिलता है, जबकि उत्कृष्ट शावक है और कुछ नहीं है। वर्णी जी ने पूरे जीवन भर थाली में ही भोजन किया, तो दो उपाय हैं छुल्लक के लिए, के तो थाली में करेगा और के कटोरे में करेगा। अब दोनों परंपराओं में से विशेष रूप से परंपरा देखने में आती है कटोरे में, और उसमें भी दो परंपराएं हैं, अपना कटोरा अपने हाथ से ले जाने वाली परंपरा, और उतनी शावक कोई कटोरा लेके उसमें भोजन करने की परंपरा, दो देखने में आती है। सबसे ज्यादा मान कसाय को जीतने के लिए आचार्य महाराज ने सजेशन दिया कि छुल्लक अपना कटोरा अपने हाथ से ले जावे और अपने हाथ से मांजे धोवे, चाहे कितौ बड़े आदमी के लड़का हो अपने हाथ से मांजो, तो अहंकार टूटेगा कि अब कछु अहंकार की बात नहीं है, क्योंकि आपने उसमें भोजन किया है, तो मांगो मांगो और आकुलता लगी रहेगी कि देखो एक कटोरा रखा उसमें भी इतना सब कुछ करना पड़ता। मांगना तो था अपनी आत्मा खुंजी, बासन मांजवी में लगे हम हैं, धोना तो थे अपने आत्मा की मलिनताओं को, कपड़ा धोऊं में पड़ रहे, तो अब जी छोड़ो कपड़ा भी छोड़ो और जी मांझना भी छोड़ो। ऐसी मन के भीतर लगन लगी रहती है, इसलिए उत्कृष्ट श्रावक अपने पास जो रख लेता है उससे भी धीरे धीरे और विरक्त होता जाता और एलक होवे तो एलक उस स्थिति में बनते हैं जब मुनि बनने में सक्षम नहीं है। ये क्रम है, उस क्रम से धीरे धीरे आचार्य शांति सागर जी महाराज ने सीधी दीक्षा का निवेदन किया तो उनके गुरु देवप्पा स्वामी ने कहा कि भाई क्रम क्रम से श्रेणियां चढ़ो, सब चीज का अनुभव करो, परिपक्वता आ जाएगी तब तुम्हें आनंद अधिक आएगा। तो उन्होंने भी छुल्लक एलक बन के फिर मुनि बने। अगर किसी की सामर्थ्य है तो सीधा सीधा भी बन जाते हैं, वो बहुत सामर्थ्यवान ही चाहिए, उसके लिए बिरले ही होते हैं जो इस तरह कर पाते हैं, पर अपन तो कमजोर हैं। तो क्रम क्रम से कहते के उसका अभ्यास करके फिर आगे बढ़ो, गिरने के चांसेस कम रहते। तो एलक की अवस्था में तो दुपट्टा भी छूट गया और अपने पानी पात्र में, लेकिन बैठ करके खड़े हो करके पानी पात्र में तो जो यथाजात रूप धारण करेगा उसी का अधिकार है। जिसने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली, जिनेन्द्र भगवान की वीतराग मुद्रा धारण कर ली, वही पानी पात्र में खड़े होकर आहार कर सकता है। गिरि भोजन ए भक्तम चा, एक बार खड़े होकर के पानी पात्र में भोजन लेना ये तो सिर्फ जिनेन्द्र भगवान की वीतराग मुद्रा को धारण करने वाला ही करे, अन्य कोई खेल खेल में भी इस क्रिया को न करे, अन्यथा पाप का भागी होगा, ठीक उतने ही पाप का जितना की मुनि बन करके उस पद को छोड़ देने का पाप है। बच्चों को खेल खेल में अपन समर्थन करते हैं, बेसो कर ले झाड़ू हाथ में ले ली, अपन भी उनका समर्थन करते। अब आजकल तो फैशन होने लगी, का कहा थी बा? फैशन परेड नहीं, क्या कहते उसको, फैंसी ड्रेस। अरे भैया ना ना नहीं, फैंसी हम फैशन कह रहे थे, फैंसी ड्रेस। फैंसी ड्रेस में छुल्लंग ही बना दें भी, एलंग ही बना दें और थोड़ो कपड़ा आगे ऐसो लगा के कहो मुनि महाराज बना देंगे, और रात में कहो हारदान दिखा देंगे फैंसी ड्रेस में, और जी विवेक नहीं रह जाता है कि कर क्या रहे हैं। इस वेश को एक बार प्राप्त करने के बाद फिर छोड़ा नहीं जाता है। ब्रह्म गुलाल ने और सिर्फ राजा के संबोधन के लिए और 6 महीने अभ्यास करके और इस रूप को धारण किया था और महाराज को संबोधन दे करके संतुष्ट करके, और जब महाराज ने कहा कि बहुरूपिये हम तुमसे प्रसन्न हैं, अब तुम अपने पूर्व वेश में आ जाओ, हम तुम्हें धन संपत्ति से समृद्ध कर देंगे, तो इतना ही कहा कि ये ऐसा वेश है जिसे एक बार प्राप्त करने के बाद फिर छोड़ा नहीं जाता, अब तुम्हें वास्तव में ही साधना करने के लिए जंगल में चला जाओ। इसलिए इस वेश को धारण करना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूर्णतः समझ करके फिर इसके बाद व्यवहार करना है। ग्रह त्याग और दूसरी विशेषता भिक्षा सनस तपस्या, जो तपश्चर्या करेगा वो भिक्षा पूर्वक भोजन करेगा। भिक्षासन मतलब उद्दिष्ट आहार का त्याग करके भोजन ग्रहण करना। उद्दिष्ट का मतलब क्या है, अपने लिए स्वयं बनाना, दूसरे से बनवाना या बनाने बनवाने का विकल्प करना, क्या उद्दिष्ट की परिभाषा है ये। अपने लिए स्वयं भोजन बनाना, किसी और से अपने लिए भोजन बनवाना या अपने भोजन का विकल्प करना, ऐसा बनाओ ऐसा करो, ये कहलाएगा उद्दिष्ट। ये है मुनि महाराज, ये है साधक के आश्रित और श्रावक के आश्रित। महाराज मैंने बनाया तो अपने लिए था पर आप ले लो, ये भी उद्दिष्ट है। बनाया तो मैंने फलाने महाराज के लिए जे चीज थी लेकिन वे नहीं आए, आप आ गए सो आप ले लो, ये भी उद्दिष्ट है। बनाया तो किसी अन्य धर्मावलंबी के लिए था, पाखंडी अन्य साधुओं के लिए बनाया था, लेकिन अब चूंकि वे नहीं आए, आप आ गए, तो आप ले लो। ये सब उद्दिष्ट कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा उद्दिष्ट के महाराज के लिए बनाया। आज वर्तमान में उद्दिष्ट की ऐसी व्याख्या कर दी जाती है कि जो चौका तो महाराज ही को लगो है सो उद्दिष्ट होगा, जो नहीं भैया, चौका तो महाराज ही को लगेगा, लेकिन महाराज का नाम लेकर के नहीं दिया जा रहा। ये वाली चीज तो मैंने क्षमा सागर के लिए बनाई है और आ गए हैं भव्य सागर जी, और अगर आपने जाके दे कहके दे दे कि महाराज जा तो हमने उनको बनाई थी, वे आए नहीं, आप ले लो, और वो ले लेंगे तो उद्दिष्ट कहलाए, और आपने कुछ कहा ही नहीं। जो आ जाएगा उसके लिए, जो साधु आ जाएंगे उनके लिए दे देंगे, किसी का नाम तो उस पर डला नहीं है। किसी का नाम उच्चार करके यदि बनाया जाए और फिर उसे भी दिया जाए, अन्य को दिया जाए, दोनों ही दोष, या अपने निमित्त बना करके साधु को दिया जाए। कई लोग कहते कि श्रावक अपने निमित्त से बनाता और फिर साधु को देता, झूठ बात। अपने निमित्त बनाया हुआ साधु को कैसे दे सकते आप? तब फिर उतनी चीज नहीं खाना आप। चार रोटी बनाई अपने नाने तो उसमें से दो दे दी, तो आप दो ही खा सकते आप। उद्दिष्ट का ऐसी व्याख्या नहीं है, अपन ने कर ली है। गर्म पानी मुनि महाराज के निमित्त से ही गर्म किया जाएगा, सबरे श्रावक गर्म पानी नहीं पियत। औषधि दान करना होगा तो जैसा रोग मुनियों के होगा, साधु के होगा, वैसी ही औषधि तैयार करना पड़ेगी, नहीं तो पहले श्रावक को वैसा रोग होवे, जब वो बनावे जब दीवे महाराज को। मैंने विचार करने की चीज है, वर्तमान में इस तरह की भी चाट बात चलती, इसलिए आज अवसर आ गया उसका कि भिक्षा सन का मतलब क्या? भिक्षा पूर्वक, भिक्षा होती है श्रद्धा और प्रेम की, और पूरी शुद्धि के साथ श्रद्धा और प्रेम से, और भिक्षा देता है, ध्यान रखता है वो इसमें इन सब बातों का। और मुनि महाराज ने अपने लिए कुछ कराया नहीं है, श्रावक अपने अतिथि संविभाग को ध्यान में रख करके और भिक्षाचर्या का निर्वाह करता है। किस तरह ये श्रावक इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है कि बताइए, कल तक जो है जिसके घर में और पचासों लोग को बिठाल करके भोजन कराता था, आज दूसरे के घर जाकर के और आहार ग्रहण कर रहा है, कोई मान अपमान और सम्मान का कोई ध्यान नहीं है, बस आगम के अनुरूप जो चर्या है, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई आकुलता नहीं। जो अलाभ को भी लाभ के समान जानता है वो भिक्षाचर्या करता है, नहीं मिला तब भी उतना ही आनंद है जितना कि मिलने में। ये भिक्षाचर्या ये श्रावक की ग्यारहवीं प्रतिमा में आ जाती है, फिर मुनि महाराज की तो आप छोड़िए। मुनि महाराज के जिम्मे मत डालिएगा ये कि उन्हीं के जिम्मे हैं जी, तो सब नहीं, ये गृहस्थ भी इतनी ऊंचाई छू सकता है कि भिक्षाचर्या के द्वारा और अपना जीवन व्यतीत करता है। क्यों भिक्षाचर्या आवश्यक है? ताकि हम विकल्प से बच जावें, आरंभ से बच जावें, इसके लिए भिक्षाचर्या, और समता भाव के लिए भिक्षाचर्या। ये सारी चीजें आत्मिक विकास के लिए हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि अरे भोजन करने की प्रक्रिया में भी धर्म ध्यान है का? को भोजन कर रहा हो, 50 जने खड़े खड़े देख रहे, मिलता धर्म ध्यान है? विचार करने की चीज है, लेकिन आचार्य भगवंतों ने कैसी प्रक्रिया बनाई भिक्षाचर्या भी, कि जो भोजन कर रहा है वो भोजन करते हुए भी कर्मों की निर्जरा कर रहा, और जो अपने लिए भोजन बनाता है वो तो कर्म बंद कर रहा, और जो साधु के देने के लिए भोजन बना रहा वो पुण्य का अर्जन करने के साथ साथ कर्मों की निर्जरा कर रहा। सुजे दो जनों का काम हो गया, अब तीसरे और बचे देखने वाला, उसके लिए क्या मिला? कहते तुम तो दुई में हर्ष व्यक्त करो, जो दातार है उसकी प्रशंसा करो कि सौभाग्य आपका, आपके यहां महाराज पधारे, और महाराज की समता भाव देखो के देखो तो जैसा दे रहे हैं चुपचाप ले रहे हैं। अरे एक आदमी बैठ हो गए और 50
अरे भैया 21,000 लाग गया जी।
के 18 मिनट, 10 बज के
18।
हमारे इस तरह के आर्गुमेंट में शामिल नहीं होने के पीछे एक ये भी रहता है कि इसमें मना मनोबल करना पड़ती बहुत, और हम जो कार्यक्रम करते हैं उसमें आदमी को हमसे मनवाना पड़ता है कि आप हाउ कह दो तो हम दे रहे हैं, और इसमें जो है उससे हाउ कराना पड़ती है हमें। इसलिए ये चीज थोड़ी सी लगती है कि छोड़ना है तो एक बार सोच के आए थे घर से कि 1 लाख देना है, सो दिए और घर वापस लौट गए। अब मनाने का नहीं है उसमें कि 25 में काम निपट जाए कि 50 में निपट जाए, ऐसा नहीं। एक हाँ मतलब बनना चाहिए, ये परंपरा बननी चाहिए, एक बार अपने को देना यानी टाइम वेस्ट नहीं करना। बढ़ाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, भाव पूर्वक होना चाहिए, बढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, है कि नहीं?
स्वरता का सच्चा दिग्दर्शन कर
सामयिकं प्रोषदोपवासो वा अब उसमें आ की मात्रा लगाओगे सीधा लिखा है सामयिकम अपन ने पढ़ लिया सामयिकम सामयिक शब्द बनाएंगे पहले तो शब्द तो है सामयिक तो इसलिए उसमें आ की मात्रा नहीं लगाओ मां में और सामयिकम पढ़ो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी एक मात्रा बढ़ने से श्लोक भंग हो रहा है देशावकाशिकम वा सामयिकम प्रोषधोपवासो वा वैयाव्रत्यम शिक्षा व्रतानि चत्वारिषु स्थानि देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य क्षेत्रनदीतावयोजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृत्था संवत्सरं ऋतुमयनम् कहीं कहीं पर रैनम भी लिखा संवत्सर ऋतु रैनम मास चतुर्मास पक्षम रक्षम चा देशावकाशिकस्य प्राहु कालावधिं प्राज्ञा सीमांतानां पंच परतः सीमांतानां परतः स्थूले तरपंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते शब्दानैनम् रूपाविव्यक्तिपुद्गलक्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्ते त्ययाः पञ्च कितने अर्थ पदों में अपन देशावकाशिक व्रत का वर्णन पढ़ेंगे शिक्षा व्रत भी श्रावक अंगीकार करता है जिससे कि उसे गृहस्थी में रहते हुए भी मुनि जनों के जैसे आचरण की शिक्षा मिलती रहती है तो पांच अनुव्रत तीन गुण व्रत के बाद अब चार शिक्षा व्रतों की चर्चा है ऐसे मिलकर के पूरे 12 व्रत हो जाएंगे पांच अनुव्रत और वो तो अनुव्रत कहलाते हैं पर जो तीन गुण व्रत तो चार शिक्षा व्रत हैं उनको जोड़ दो तो ये 7 सील व्रत कहलाते हैं इन्हीं का नाम 7 सील व्रत हो गया इस तरह से भी कहीं कहीं पर वर्णन आता है क्या कह रहे हैं कि शिक्षा व्रत कौन कौन से हैं चत्वारी शिक्षा व्रतानी शिष्ठानी 4 शिक्षा व्रत कहे गए हैं कौन कौन से देशावकाशिकम देशावकाशिक नाम का पहला शिक्षा व्रत है सामायिकम सामायिक नाम का दूसरा शिक्षा व्रत है प्रोषदोपवास नाम का तीसरा शिक्षा व्रत है और बैया व्रत नाम का चौथा शिक्षा व्रत है। कहीं कहीं पर बैया व्रत की जगह पर अतिथि संविभाग यह नाम भी दिया हुआ है। तो चार ही शिक्षा व्रत हो गए। अपन ने यह भी समझ लिया था कि कहीं कहीं पर देशावकाशिक को और गुण व्रत में ले लिया है और वहां से उठा करके भोगो भोग को यहां पर ट्रांसफर कर लिया है। इतना ही अंतर है और कुछ भी नहीं। अब देशावकाशिक व्रत कैसा है? तो देशावकाशिकम स्यात्। देशावकाशिक व्रत होता है कैसा होता है? काल परिच्छेदिनी ने देशस्य, काल का परिच्छेद करना अर्थात समय की मर्यादा के द्वारा, देशस्य अर्थात प्रदेश या देश का, काल की मर्यादा के द्वारा प्रदेश का प्रति अहम अनुव्रतानाम प्रति संहारो, अनुव्रतानाम प्रत्यहम, अनुव्रत को धारण करने वाला श्रावक प्रतिदिन रोज रोज, जिसने अनुव्रत धारण किए हैं गुणव्रत धारण किए हैं वो क्या करे? रोज रोज समय की मर्यादा के द्वारा विशालस्य देशस्य प्रति संहारः, बहुत बड़ी जो सीमा रखी है आने जाने की उसको प्रति संहार अर्थात कमती करता रहे। इसी को कहते हैं देशावकाशिक। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा है, बहुत बड़ी सीमा रख ली, विदेश नहीं जाऊंगा पर अपने देश की सीमा रख ली, चारों दिशाएं चारों विदिशाएं ऊपर नीचे बड़ी सीमा कर ली थी दिग्व्रत में। तो कह रहे दिग्व्रत में जो सीमा करी थी वो अनुव्रत को धारण करने वाला अब क्या करेगा? प्रतिदिन उस सीमा का संकोच कर लेगा, क्योंकि हमेशा खूब दूर दूर तो जाना नहीं है, तो आज तो कितना जाऊंगा, आज तो मैं अपने प्रदेश से बाहर नहीं जाऊंगा, राजस्थान से बाहर जाने का काम नहीं है, तो राजस्थान की सीमा कर ले। फिर अब राजस्थान में भी भाई हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट प्लेस में इससे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, उसको और कम हो गया, उससे भी और कम अपने शहर में ही रहूंगा, अपने शहर से भी कम अपने मोहल्ले में ही रहूंगा, अपने मोहल्ले से भी कम अपने घर में ही रहूंगा, अपने घर से भी कम अपने कमरे में ही रहूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा, ये हो गया इस तरह, ये सब सीमा। तो इससे क्या होगा? बाहर का विकल्प मिट गया, अब कहीं आने जाना नहीं, बस यहीं। जैसे कि मुनि महाराज एक जगह बैठ गए तो बैठे हुए हैं आराम से, अब जिसको मिलना हो आते रहो, हम नहीं जाएंगे कहीं पर भी आप अपने। तो इसी तरह से घर में अपन ने तय कर लिया, बच्चों को बता दिया कि भाई आज तो हमारी घर में ही रहेंगे, हमसे और कोई काम का भी नहीं कहना, हम तो अपना धर्म ध्यान करेंगे। तब तब धर्म ध्यान हो पाता है, नहीं तो सीमा नहीं बांधो तो ठीक है घूमो फिरो, और सीमा नहीं बांधी और घूमे फिरे भी नहीं पर उतने ही पाप लग गया जितना घूमने फिरने का लगता, क्योंकि सीमा नहीं बांधी। हाँ ये निष्क्रिय पाप कहलाता है जो अपन ने किया ही नहीं फिर भी लगा, क्यों? क्योंकि त्याग नहीं था। त्याग के बिना अपन को जो चीजें ग्रहण भी नहीं करते हैं उनका भी पाप लगता रहता है, और त्यागने के बाद फिर अपन को क्योंकि ग्रहण का भाव ही नहीं है तो उस तक जन आकुलता नहीं है, इसलिए अपन को कर्मों की निर्जरा होती है, बंध नहीं होता। और जब तक त्याग नहीं किया ग्रहण का भाव बना है, ग्रहण भले ही नहीं कर पाए लेकिन ग्रहण का भाव तो है, तब तो त्याग नहीं कर रहे, तब उसके लिए ग्रहण नहीं करते हुए भी दोष लगेगा। रात्रि भोजन का त्याग नहीं है लेकिन रात में खाते भी नहीं है, तब भी कोई फायदा नहीं होगा आपके रात में नहीं खाने से, क्योंकि आपने त्याग ही नहीं किया। आपको आकुलता तो है अभी भी कि कभी खाना पड़ेगा, तो नहीं हम तो कभी खाते नहीं है, हम बरसों से नहीं खाए, तो त्याग कर दो। त्याग नहीं कर, त्याग सोच करके, सोच करके कहेंगे तो फिर बैठो आप अपने सोच के आना आप आराम से। कल तो मैंने यही कहा लोगों को, जल्दी से लिखा हमने ब्रैकेट में, वो करने लगे बाहर के लिए छूट, हमने कहा आंटी जल्दी करो हमारी और संख्या कम हुई है कि नहीं, हमने उनको ये भी सजेस्ट नहीं किया कि थोड़ा हिला डुला करके कि कर तो लो, बहुत मुश्किल है। बाई फोर्स अपन ने कर भी लिया तब भी निर्वाह नहीं होता, मन में आकुलता बनी रहती है कि मैंने लिए तो लिया लेकिन कभी मौका आएगा तो क्या करूंगा। ऐसे नहीं, नियम लेने के लिए बहुत साहस चाहिए। ये अनुवृत्ति इतना साहस करता है कि अब तो मैं अपने घर से भी बाहर या अपने मोहल्ले से बाहर या अपने शहर से बाहर आज आवागमन ही नहीं करूंगा तो तज्जन मेरे पाप से मैं बच जाऊंगा। कितनी कितनी सीमाएं रखता है, अब सीमा बना दी देशावकाशी व्रत की। अपन ने तो संक्षेप में समझ लिया कि जो बड़ी सीमा थी उसको कमती करना। तब किसी ने पूछ लिया कि कमती कैसे करें भाई, तो ग्रहहारी क्रामा नाम वही आ गया। अपने घर में इन्होंने हारी ले लिया अर्थात छावनी कहलाती है, जो एक एक एरिया है उसको बोल देते हैं छावनी, जहां पर बहुत सारे लोग रहा करते हैं। अपन सामान्य रूप से छावनी बोलते हैं सेना की, लेकिन पहले छावनी मतलब जहां 10-25 घर बने हुए हैं, और फिर ज्यादा घर हैं तो फिर वो गांव हो गया, फिर गांव से बाहर नहीं जाऊंगा। या कि एक निश्चित अपने खेत क्षेत्र का मतलब यहां पर क्या है, खेत, दो खेत के बाद नहीं जाऊंगा, चार खेत के बाद नहीं जाऊंगा, ऐसी भी सीमा लेते थे लोग। फिर नदी, अपने गांव से बाहर जो नदी बह रही उससे आगे नहीं जाऊंगा, अपने गांव से बाहर जो जंगल है उससे उसके उस पार नहीं जाऊंगा, या कि फिर इतने किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा, 20 किलोमीटर चारों दिशाओं में, वैसे तो पूरे देश में जा सकता हूं पर अभी एक दिन के लिए 20 किलोमीटर की सीमा बना ली। सुबह सुबह भगवान के दर्शन करके सबसे पहले जो त्यागी व्रती है वो यही करेगा कि कहीं क्या विचार कर लिया आज कहीं जाना तो है नहीं, कहीं नहीं जाना तो फिर सीमा कर लो। दिन भर में मौका आ सकता है आने जाने का, पर फिर मैं विकल्प नहीं करूंगा आने जाने का। ये साहस होना चाहिए तब ली जाएगी, नहीं तो विकल्प आ गया करी हमने आज ही तो ली जा सीमा और आज ही काम अटक गया, बहुत जरूरी है अब क्या करें, नहीं अब नहीं जाएंगे। धार्मिक कार्य से चले जाएंगे लेकिन अपने सांसारिक कार्य से नहीं जाएंगे, इतनी छूट हो सकती है। धार्मिक कोई कार्य आ गया तो चले जाएंगे लेकिन कमाने के लिए, पैसे के लिए, उसके लिए, व्यापार इत्यादि के लिए नहीं जाएंगे। ये असल में व्यापार इत्यादि में जो होने वाली हिंसा है उससे बचाने के लिए कह रहे हैं कि ये सीमा बना लो। इतने प्रकार से सीमा बनाई जा सकती है इन सबके द्वारा। तपो वृद्धा, जो तप में वृद्ध है वो कौन है, वे हैं गणधर। तो ऐसे गणधर आचार्य महाराज ने सीमा बनाने का ढंग कैसे बता दिया कि आप चाहें तो अपने घर की सीमा बना लें, आप अपने मोहल्ले छावनी की बना लें, अपने गांव की बना लें, खेतों की बना लें, नदी तक जाएं, जंगल के उस पार नहीं जाएं, या कि किलोमीटर के हिसाब से निश्चित कर लें कि यहां से बाहर नहीं जाऊंगा। फिर कह रहे हैं अब काल की सीमा भी है, प्रतिदिन लेना हो तो एक दिन की भी ली जा सकती है और साल भर की भी ली जा सकती है, ये भी है। वो तो जीवन पर्यंत की ले ली दसों दिशाओं की, लेकिन इसमें इसमें काल की सीमा है, उसमें काल की सीमा नहीं, उसमें तो जीवन पर्यंत। अब काल की सीमा कैसे करना, क्षेत्र की तो कर ली, तो काल की सीमा के लिए कह रहे हैं कि प्राज्ञा कालावधिम प्राभु, जो प्राज्ञ हैं अर्थात गणधर महाराज हैं वे काल की मर्यादा बताते हैं कैसे करना। संवत्सरम, एक वर्ष के लिए मैं इतनी सीमा रखता हूं, या कि ऋतु, दो माह की एक ऋतु होती है, वैसे जो है चार चार माह की मानते हैं अपन, वो तो मोटा हिसाब है, वैसे ऋतु दो दो माह की होती, वर्षा ऋतु भी दो माह की है देखा जाए तो, फिर उसके बाद जो है शरद ऋतु आ गई, वसंत ऋतु आती, इस तरह से ये छह ऋतुएं जो है तीन की दो दो महीने की छह हो जाती। तो कहते दो माह के लिए, अयनम, अयन का मतलब छह माह, तो छह माह के लिए लिया। मास चतुर्मास पक्षम, एक महीने का भी नियम ले सकते हैं, चार महीने का भी ले सकते हैं, एक पक्ष का 15 दिन का ले सकते हैं। ऋक्षम, एक नक्षत्र का, 28 नक्षत्र एक महीने में और व्यतीत हो जाते हैं, एक राशि में सवा दिन रहते हैं, 12 राशियां हैं, मुश्किल से एक राशि में भ्रमण करता, तो एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में मतलब कितना हुआ, 24 घंटे हो गए लगभग, 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा, 28 घंटे के लगभग बस। तो एक नक्षत्र मतलब नक्षत्र परिवर्तित हुआ, जैसे रोहिणी का व्रत करते हैं लोग, तो वो क्या है, रोहिणी नक्षत्र उस दिन रहता है एक दिन के लिए, तो उस दिन का। इसी तरह से जो है 28 नक्षत्र हैं, एक 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 दिन वो गमन करते हैं, तो उस हिसाब से भी जो है कि इस नक्षत्र में मैं बाहर नहीं जाऊंगा, या कि फिक्स कर लिया कि जब भी महीने में रोहिणी नक्षत्र आएगा उस दिन नहीं जाऊंगा, ऐसा भी कर सकते, या कि आश्लेषा नक्षत्र आएगा, पुष्य नक्षत्र आएगा तो नहीं जाऊंगा। अब वो उस नक्षत्र महीने में एक बार आया, एक बार में उसका रिपीटिशन होगा, इस तरह से भी एक नक्षत्र का ले सकते हैं। देशावकाशिक की काल की सीमा इस तरह से बनाई जा सकती, क्षेत्र की सीमा और कितने काल के लिए बनाई है क्षेत्र की सीमा, वो दोनों चीजें बना ली, इससे क्या फायदा होता। कहते सीमांतानाम परतः, जो हमने सीमा बनाई है उससे आगे परतः, स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात, स्थूल और इतर, इतर मतलब सूक्ष्म, अभी तो श्रावक ने स्थूल पापों का त्याग किया है, उसने सूक्ष्म का तो किया नहीं, लेकिन सीमा के बाहर तो अब ना स्थूल करना है ना सूक्ष्म करना, अपनी सीमा में रह करके स्थूल पाप तो नहीं करेगा लेकिन सूक्ष्म पाप तो उससे होंगे, बचे नहीं सकता वो। तो कहते कि अब सूक्ष्म पाप से ही बचना चाहो तो कैसे बच सकते, सीमा बना लो, सीमा के बाहर स्थूल तो करना ही नहीं है, सूक्ष्म से भी बच गए, क्योंकि जाने ही नहीं, उसके बाहर कोई भी पाप नहीं होगा, तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों पापों से वो विरक्त हो जाता है। देशावकाशिके न महाव्रतानी प्रसाद्यन्ते, इसलिए देशावकाशिक व्रत लेने पर वह महाव्रत के समान ही हो जाता है, अनुवृत्ति है, लेकिन उसने सीमा बना ली और सीमा के बाहर समस्त पाप का त्याग हो गया, उस समस्त पाप के त्याग का नाम महाव्रत है, इसलिए उसको हम कह सकते हैं कि वो अपनी सीमा से बाहर महाव्रती के समान, अपनी सीमा के भीतर तो सूक्ष्म पाप उससे हो रहे हैं इसलिए अनुव्रती है, लेकिन अपनी सीमा से बाहर के सब पापों का त्याग होने से महाव्रती के समान है। एक ही आचार्य महाराज हैं जिन्होंने की गृहस्थ की खूब पीठ थपथपाई है, क्यों थपथपाई, कि गृहस्थी में रह करके भी इतना काम कर रहा है, ये शावासी का काम है, और उसको एनकरेज करते हैं कि आप बढ़ो, आप बढ़ सकते हैं वहां रह करके भी, क्योंकि एक सदगृहस्थ ही एक ऐसे पुत्र को जन्म दे सकता है जो महाव्रती बन सकता है, जिसका अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा होगा वही संस्कारवान पुत्र को उत्पन्न कर सकता मोक्ष मार्ग के लिए। इसलिए गृहस्थी भी जंजाल नहीं है, गृहस्थी भी आदर्श अगर बनाई जाए तो वह भी मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए एक धीमा रास्ता है, फास्ट तो नहीं है, धीमा रास्ता है, धीमे धीमे जो है आगे बढ़ता चला जाए, इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी सीमा कर लेने से आपको भी महाव्रत जैसा अनुभव होगा। कैसा महाव्रत में अनुभव होता है, फिर जो है सावधानी रखना चाहिए, आपने व्रत तो ले लिया लेकिन व्रत के उल्लंघन का मौका आ सकता है, धोखे से भी आ सकता, प्रमाद से भी आ सकता, असावधानी हो जाती है, विस्मरण हो जाता है, बहुत सी बातें हैं, या कि कई बार जानबूझ करके भी हो जाता, जानबूझ करके करेंगे तो ज्यादा प्रायश्चित लेना पड़ेगा, अनजाने में हो गया, असावधानी से हो गया, प्रमाद से हो गया तो कमती है, पर सावधानी रखनी चाहिए। कौन कौन सी पांच बातों का ध्यान रखना, तो कहते प्रेषण शब्द आनयन रूपाभिव्यक्ति और पुद्गलक्षेप, ये पांच देशावकाशिक नाम के शिक्षा व्रत के अत्याया व्यपदिश्यन्ते, अत्याया यानी अतिचार, इनको पांच अतिचार कहा गया है। प्रेषण, अपन तो अपनी सीमा बना करके बैठ गए लेकिन अपने नौकर से कहा कि तुम जो हमारा व्यापार करके आओ, हम तो नहीं जा रहे, हमने तो अपने गांव की सीमा ले ली, तुम चले जाओ, हमारा ये धंधा पानी जो भी है करके आ जाना, ये दोष लग गया। प्रेषण नाम का भेज दिया आपने, नौकर को काम के लिए भेज दिया, प्रेषण नाम का विचार हो गया, मर्यादा से बाहर सांसारिक कार्यों के लिए दूसरे को नहीं भेजना। फिर अब अपन अपनी सीमा में बैठे हुए हैं और नौकर जो है काम के लिए गया है और सुनी नहीं रहा, अपन को काम अटक गया, तो फिर खांसी इत्यादि करके उसको इंडिकेशन दे दिया, ये कहलाता शब्द। हाँ कह रहे सुन ही नहीं रहे तुम, अब हमें बाहर आना नहीं है, इतनी हमारी सीमा है और बाहर करेंगे तो उनको बुलाने के लिए आवाज दे दी या कोई शब्द कर दिया, या फिर आनयन बाहर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों से आज्ञा दे करके कि फलानी वस्तु ले आओ। अब हम तो जा नहीं सकते, हमारी तो सीमा है, इसलिए फलानी वस्तु लेकर के आ जाओ। इस तरह ये आनयन नाम का अतिचार लग जाएगा और अपनी मर्यादा में रहते हुए भी और कोई इंडिकेशन देना है तो खिड़की में अब कमरे से बाहर नहीं जाना है, तो अब कोई सुन भी नहीं रहा आवाज की तो खिड़की के बाहर अब खिड़की के खड़े हैं, जो कोई देख ले तो हमें देख ले तो हम बुला लेते सारा कर लेते, तो वो कहे रूपाभि व्यक्ति अपने रूप को दिखा करके और उनको बुलाने की चेष्टा नहीं करना अपना काम। ये सब जो है सांसारिक कार्यों के लिए ऐसा मन में आ जाता है भाव, जिसकी बहुत आसक्ति होती है उसको इस तरह का भाव आ जाता है। और या फिर उद्गल क्षेपा, अब हम खड़े भी हैं खिड़की में, आवाज भी दे रहे हैं, सामने दिख रहा है व्यक्ति और आ ही नहीं रहा, तो कोई सामान फेंक करके उद्गल क्षेपा, कंकर वगैरह फेंक करके, तो वो देखेगा कहां से गिरा है, अच्छा भैया जी बुला रहे हैं तो ठीक है। इस तरह से ये पांच अतिचार लग सकते हैं। अब आज वर्तमान में अगर कोई लेगा तो उसके लिए बहुत सावधानी रखना पड़ेगी इन व्रतों के पालन करने के लिए। इतना ही अपन रखते हैं प्रश्न उत्तर, फिर सामायिक का विषय शुरू हो गया। ब्रीफ में क्या हुआ, संक्षेप में कोई पूछेगा कि देशावकाशी किसे कहेंगे, तो दिग्गत में जो बड़ी सीमा ली थी उसे रोज रोज कम करने का नाम देशावकाशिक व्रत है। सीमा कम करने का ढंग यह है कि हम अपने गांव में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, या कि अपने प्रदेश में रहेंगे, या नदी और जो भी इस तरह की सीमा है वो बना ली। काल की सीमा साल भर के लिए 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, या कि एक नक्षत्र यानी दिन भर के लिए जो अपनी सुविधा है वैसी सीमा बना ली। इससे लाभ क्या है, लाभ इतना ही है कि हम सीमा में तो पाप करते ही हैं लेकिन सीमा से बाहर के व्यर्थ पाप से हम बच जाते हैं, जो हमें करना ही नहीं था आज तो हमने त्याग ही कर दिया उस चीज का। इस तरह महाव्रत के समान हमें अनुभव करने की कहना चाहिए एक स्थिति निर्मित हो जाती है, और सावधानी रखना चाहिए कि लालच बस अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने के जो जो ढंग हैं उनसे बचना चाहिए। इतना ही अपन ने कर लिया। प्रश्न पूरा पढ़ने की अनुकंपा करें क्योंकि बहुत बड़ा है, इतना ही घर भी हो गया। अब मैं पहले मन में पढ़ लेता हूं फिर उसमें से आपको बता दूंगा। पूरा तो नहीं पढ़ेंगे हम, शॉर्ट में देख लेते हैं। पहले तो इन्होंने मेरी प्रशंसा में कुछ लाइनें लिखी, ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने हमसे कुछ अपेक्षाएं भी करी हैं कि आपके जीवन का समय मंदिरों तक सीमित न रहकर देश और समाज के विभिन्न प्रकल्पों में लगे अगर तो देश समाज और धर्म के हित में होगा, ये इनका सोचना है। और फिर बाद में अपने इस बात के समर्थन के लिए इन्होंने 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ में विथ डाटा विथ लॉजिक अपनी बात को कहा है कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ी विषम स्थितियां अपने धर्म के फैलने में बन जाती हैं, बाधाएं भी आ जाती हैं, इसलिए आपको विचार करके देश और समाज के लिए भी थोड़ा सा मंदिर से बाहर निकल करके भी कुछ करना चाहिए जिससे कि धर्म का भी होगा। इसके लिए आचार्य महाराज का एक वाक्य है कि धर्म धारण करने के लिए है, प्रचार प्रसार के लिए नहीं है। जी उनका उत्तर है। अब जी उत्तर हमने दे दिया मगर इससे इनको थोड़ी वो पड़ेगा, आनंद थोड़ी है। वो कहेंगे अरे जी तो आपने बुद्धू बना दिया, हम तो सोच रहे थे आप बहुत बुद्धिमान हो तो आप अच्छा उत्तर देंगे, है कि नहीं। इसलिए और केवल इसलिए आप जैसे सक्षम व्यक्ति को इसकी अपेक्षा से अपेक्षा है और है कि कृपा करके कोई रास्ता बताएं हमारा धर्म कैसे सुरक्षित हो। भैया धर्म तो हमेशा धर्मात्मा के भीतर सुरक्षित रहेगा। हम लोग सोचते हैं कि हम धर्म को मंदिर मूर्ति और ग्रंथों में सुरक्षित रखेंगे, सो भैया वह बाह्य सुरक्षा है, सो वह भी करनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए भी कुछ लोगों को हमें नियुक्त कर देना चाहिए कि वे अपने धर्म ग्रंथों की सुरक्षा करें, वे अपने मंदिरों की सुरक्षा करें, वे अपने मूर्तियों की सुरक्षा करें। ये काम करने वाले अलग लोग होना चाहिए। एक ही व्यक्ति को जो फुर्सत है, आपको दिखाई दे रहा है कि फुर्सत है, घर तो छोड़ ही दो, जो करने धन्य तो नहीं है अभी नहीं, लेकिन तो आपको जो एक व्यक्ति जो फुर्सत का दिखाई पड़ रहा है उसको जी सब काम न सौंपो। आप जो है मंदिर मूर्ति और ग्रंथों की सुरक्षा के लिए और कोई व्यक्ति तय कर लो। हमारे लिए तो हम अपने धर्म की सुरक्षा करते रहे अंतरंग में। रत्नत्रय सो धर्म है, उस रत्नत्रय का जो पालन करता है मानो वह अपने अंतरंग धर्म की सुरक्षा कर रहा, या कि धर्मात्मा की सुरक्षा करना वह भी धर्म की सुरक्षा ही है। धर्मायतनों की सुरक्षा तो करना ही है लेकिन उन धर्मायतनों की सुरक्षा एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता। धर्मायतनों की सुरक्षा भी कैसे होगी इसका उपाय बता दूं, धर्मायतनों में आते जाते रहना तब धर्मायतनों की सुरक्षा होगी, नहीं तो तारो गबो है हफ्ता भर में एक बार जा रहे तो क्या धर्मायतन बना बना दूं आप जाओ ही नहीं, तो उसमें भी वही करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा जितने धर्मायतन हैं, जितनी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ की सुरक्षा कैसे होगी। देखा जाए तो धर्म ग्रंथ पढ़ने से धर्म ग्रंथ की सुरक्षा होगी, भंडरिया में आरती उतारे से नहीं होगी, रख करके दारो लगा के बढ़िया छाव में उसकी सुरक्षा तब होगी जब हम उसका निरंतर स्वाध्याय। तो ऐसे लोग पैदा करो जो धर्म ग्रंथों को खोल करके उनका स्वाध्याय करने में रुचि रखते हो। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओ जो पूजा पाठ में और 24 घंटे में दो दो चार चार बार मंदिर आते हो, माली जी के जिम्मे सौंप दो और अपने घरे पहुंच गए, अब कल आए, अब कल तक पाभव मंदिर को कछु नहीं बे जाने, और तनक गड़बड़ी हो जैसे सवेरे से हल्ला करे कि तुमने जी ऐसा नहीं करा, तुमने जी बुलाओ उसको और बोल आओ और ये करो, दरी बिछाओ जी, पाटा लगाओ जी, करो सब काम करवाएंगे। अपन अकेले आकर के जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम, है कि नहीं, ऐसे तो करते हैं और क्या करते हैं, ऐसे करके लौट गए फिर बाकी तो जो डरो है ऐसे। अब इसकी सुरक्षा कौन करे, इसकी सुरक्षा हमें बार बार आकर के देखना पड़ेगा। अपने घर में तो तारो लगा के बाहर जा तो तीन बार हिला के देख के जा के लग है कि ठीक से कि नहीं लग, जब लौट के आओ उससे पहले देख ले क्या लगो मिसालो, ऐसी सुरक्षा करते क्या भाई। में ऐसी सुरक्षा स्वयं श्रावक का कर्तव्य है कि वो ऐसी सुरक्षा अपने धर्म की करे, और मुनि जनों का कर्तव्य है कि वे अपने अंतरंग में रत्नत्रय की सुरक्षा बनाए रखें और जो उनके संपर्क में आवे सो उसको रत्नत्रय की प्रेरणा दे करके उसको भी धर्म में लगा करके धर्म को सुरक्षित बनाए। तो अपनों अपनों काम संभालो और एक दूसरे को काम करने लगो तो गड्ढ हो जाएगा काम, तो उसमें आनंद नहीं आएगा। इसलिए हमारा आपसे यही कहना है कि ये काम हमसे नहीं करवाओ, हमसे हुए भी नहीं, क्योंकि हम इस काम में कमजोर, हम अपनी दुकान तक पे नहीं गए, रुपये हमने खर्चे हजार दो हजार गिने नहीं है। देखो ईमानदारी से बताएं, न हम उसमें प्रपंच में कभी पड़े, न हमें उसमें रुचि है, इसलिए हमें जी रुपये रुपये इकट्ठी होने लगा तो हमें बड़ी वो होती है, क्या इसमें क्या रखा हुआ है, इसी में लगे हुए हैं अपन है? इससे तो अपने को समय बचा करके अपना कुछ धर्म ध्यान करना चाहिए। इसलिए हमसे वो काम नहीं हो पाएगा भैया, हम तो इतना ही कर सकते कि अपने अपनी जितनी शक्ति है उतना रत्नत्रय का पालन कर लो, जो पास में आन के बैठ गो सूख चार बातें बता दी, ये तुमसे बने तो तुम करियो और नहीं बने तो हम आओ कचू आग्रह नहीं है कि तुम करो, करना हो तो करो, मैं करना हो मत करो, कोई बस इतना ही कर सकते हम, इससे ज्यादा और हमसे अपेक्षा नहीं रखो भैया, नहीं तो हम अपने आप को यही समझेंगे कि बेकार में बुद्धिमान भाई, जो और दिक्कत हो गई वे कह रहे हैं कि आप सक्षम हैं, आप बुद्धिमान हैं, तो अच्छो रहते तो कोई डिग्री गिरी नहीं होती तो जो काम नहीं करने पर तो बुद्धि होते तो अच्छे रहते, फिर कोई नहीं कहता कि आप ये काम करो। शांति से धर्म ध्यान करना ही धर्म की रक्षा है, सीधी सीधी सी बात अंत में इतना ही करूंगा और बाकी तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं। और हमें विश्वास है कि पंचम काल के अंत तक एक मुनि, एक आरिका, एक श्राविका, एक श्रावक, ये चार प्राणी तो बची रहेंगे, को कितो भी कछु करे हमारा कोई बिगाड़ नहीं हो सकता, कमी बेशी हो सकती, कभी हमारा वर्चस्व रहेगा, कभी हम बिल्कुल माइनॉरिटी में आ जाएंगे, कभी हमारा ही वर्चस्व रहेगा, ये तो उत्थान पतन तो हमेशा होता रहेगा, लेकिन इसके बाद भी हम सरवाइव करेंगे। जबकि हमने अपना कोई तिलक नहीं बनाया, हमने कोई अपनी ड्रेस नहीं बनाई, हम पंजाब में रहे तो पंजाब की ड्रेस पहन ली, महाराष्ट्र में रहे तो हमने महाराष्ट्र की पहन ली, कर्नाटक में तो कर्नाटक की पहन ली, हमारी कोई ड्रेस नहीं, हमारा कोई तिलक नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, फिर भी हमारी आइडेंटिटी है, फिर भी हमारी पहचान है। आज भी देख लो आप, वो पहचान कैसे बनी है, तिलक लगाने से बनी कि धोती कपड़ा पहनने से बनी है, कछु से नहीं बनी, बनती पहचान अपने आचरण से है। भैया जैनी आदमी झूठी नहीं बोले, भैया जैनी आदमी है रात में नहीं खाएगा, भैया जैनी आदमी है पाप नहीं करता, हिंसा नहीं करता, दया भाव रखता है, जी साख है हमारी कि दया भाव रखता है, जैनी आदमी है। तो इस तरह अपन बना करके रखेंगे तो सुरक्षित रहेगी, और नहीं तो किताब में तो लिखी है कि दयालु होते हैं, लेकिन पता लगा कि वे तो भालू जैसे होते हैं, तो दयालु कैसे हो गए। आचार्य जी ने